नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का एक उद्बोधन है जो अखंड ज्योति पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। शीर्षक है, जीवंत विभूतियों से भाव भरी अपेक्षाएं।
जी, इसमें पूज्य गुरुदेव उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनमें सामान्य लोगों से कुछ ज्यादा चमक, कुछ खास बात होती है, जिन्हें वो विभूति कहते हैं।
हाँ, जैसे गीता में विभूति योग है जहाँ श्रेष्ठता को भगवान का विशेष अंश माना गया है।
बिल्कुल, पूज्य गुरुदेव उसी तरफ इशारा कर रहे हैं, ये ईश्वरीय अंश वाले लोग।
तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि पूज्य गुरुदेव के अनुसार इन विभूतियों की जिम्मेदारियां क्या हैं, समाज इनसे क्या उम्मीद रखता है।
हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है।
शुरुआत करते हैं इस बात से कि पूज्य गुरुदेव संपदा और विभूति में क्या फर्क बताते हैं। ये दोनों एक ही चीज है या अलग है?
नहीं, बिल्कुल अलग है। पूज्य गुरुदेव इसे बहुत साफ करते हैं। देखिए, संपदा वो है जो हमें भाग्य से मिल जाती है या विरासत में, हमारे जिन धन, जमीन, जायदाद, ये किसी को भी मिल सकती है ना?
अच्छा,
तो मतलब ये बाहरी चीज हुई। हाँ, बाहरी। लेकिन विभूति जो है वो आंतरिक है, वो कमाई जाती है, अर्जित की हुई चीज है।
जैसे
किस तरह की चीजें विभूति कहलाएंगी?
जैसे मान लीजिए बहुत तेज बुद्धि, प्रखर बुद्धि,
या कोई खास प्रतिभा, कोई कला, साहस, या फिर गहरी समझ, मानवीय संवेदना। ये सब विभूतियां हैं।
और पूज्य गुरुदेव मानते हैं कि ये ईश्वर का एक विशेष प्रसाद है और इसका मूल्य संपदा से कहीं ज्यादा है।
बिल्कुल, कहीं ज्यादा, क्योंकि यही विभूतियां हैं जो समाज को, दुनिया को दिशा दे सकती हैं।
लेकिन क्या ये विभूतियां हमेशा सही काम में लगती हैं?
यही तो समस्या है। अक्सर ये या तो सोई रहती हैं, मतलब व्यक्ति को पता ही नहीं अपनी क्षमता का, या फिर गलत दिशा में लग जाती हैं। पूज्य गुरुदेव ने उदाहरण भी दिया है, जैसे रावण ने कुंभकर्ण को जगाने की कोशिश की। मतलब इन शक्तियों को जगाना और सही दिशा देना, ये बहुत जरूरी है।
तो ये विभूतिवान लोग असल में कौन हैं? क्या पूज्य गुरुदेव कुछ उदाहरण देते हैं?
हाँ, उन्होंने कुछ नाम लिए हैं, जैसे जिन्ना, टाटा, बिड़ला, सरदार पटेल। अब देखिए, ये नाम अलग अलग क्षेत्रों से हैं, प्रभाव भी अलग अलग रहा है।
हाँ, कुछ सकारात्मक, कुछ शायद विवादास्पद भी। तो क्या पूज्य गुरुदेव ये कह रहे हैं कि विभूति का इस्तेमाल किसी भी दिशा में हो सकता है?
बिल्कुल, असल चीज है वो जीवट, वो जीवन शक्ति, वो लगन, वो धुन। जिनमें ये जीवट होता है ना, वो जिस भी काम में लगते हैं, फिर वो शीर्ष पर ही पहुंचते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा।
अच्छा,
इसीलिए दिशा इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने सूरदास और तुलसीदास का उदाहरण दिया। पहले उनकी लगन, उनकी आसक्ति कहीं और थी, पर जब दिशा बदली तो भक्ति में भी सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे।
हाँ, ये बात तो है। अंगुलीमाल का भी उदाहरण आता है मन में।
बिल्कुल, अंगुलीमाल डाकू से संत बन गए। सम्राट अशोक कितने क्रूर शासक थे, फिर धर्म प्रवर्तक बने। ये जो अंदर की आग है वो जीवट है, वही विभूति का प्रमाण है। सही दिशा मिल जाए तो चमत्कार हो सकता है।
तो फिर इन विभूतिवानों से पूज्य गुरुदेव की मुख्य अपेक्षा क्या है, क्या संदेश है उनके लिए?
मुख्य संदेश यही है कि जिन लोगों में ये जीवट है, जो सही मायनों में जिंदा दिल है, उन्हें पहले तो पहचानना होगा और फिर उन्हें जगाना होगा। उन्हें ये एहसास कराना होगा कि भाई, आपकी जरूरत सिर्फ आपका पेट भरने या परिवार पालने तक नहीं है। ये युग, ये समाज आपसे कुछ मांग रहा है, आपकी क्षमताओं की जरूरत है।
जरूरत किस तरह की, क्या काम करने की अपेक्षा है?
पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अब समय बदल गया है। केवल धन दौलत इकट्ठा करने का मूल्यांकन अब उतना नहीं रहा। इन विभूतिवानों को अपनी विद्या, अपनी कला, अपनी बुद्धि, अपने प्रभाव का इस्तेमाल समाज के भलाई में करना चाहिए। जैसे वो कहते हैं, रात्रि पाठशाला चलाओ, निरक्षरता मिटाओ, लोगों को स्वास्थ्य की बातें सिखाओ, कुरीतियों के खिलाफ बोलो, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दो। ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है।
पूज्य गुरुदेव ने मुर्दा और जिंदा लोगों का भी जिक्र किया है, ये क्या है?
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। मुर्दा वो है जिनमें बस स्वार्थ है, कोई जोश नहीं, कोई तड़प नहीं समाज के लिए। वो सोचते हैं बस माला फेर ली या कोई पूजा पाठ कर लिया, सब ठीक हो जाएगा। उनमें वो जीवट नहीं है।
और जिंदा?
जिंदा वो है जिनमें विवेक है, संवेदना है, समाज की पीड़ा देखकर जिन्हें दर्द होता है, कुछ करने की छटपटाहट होती है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को बदलने के लिए ऐसे ही जिंदा लोगों की जरूरत है।
लेकिन इन जिंदा लोगों तक ये बात पहुंचाएगा कौन? उन्हें कौन बताएगा? उनकी जिम्मेदारी?
इसके लिए पूज्य गुरुदेव संदेश वाहकों की बात करते हैं। जैसे राम ने अंगद को भेजा था रावण के पास, हमें ऐसे विभूतिवान लोगों को ढूंढना होगा, उनके पास जाना होगा बहुत विनम्रता से, उनकी क्षमताओं की प्रशंसा करनी होगी, उन्हें उनकी अहमियत समझानी होगी। पूज्य गुरुदेव तो यहां तक कहते हैं कि जरूरत पड़े तो पूरे निष्ठा से उनकी खुशामद भी करनी पड़े तो करनी चाहिए।
अच्छा,
हाँ खुशामद भी, हाँ, ताकि वो युग की पुकार सुन सकें। उन्हें ये बताना होगा कि आप ईश्वर की रिजर्व फोर्स हैं, आपको खास काम के लिए तैयार किया गया है।
ये रिजर्व फोर्स वाली बात बहुत दिलचस्प है। अच्छा, पूज्य गुरुदेव ने उम्र को लेकर भी कुछ अलग बात कही है ना, जवानी और बुढ़ापे के बारे में।
हाँ बिल्कुल, वो उम्र के नंबरों से जवानी या बुढ़ापा नहीं तय करते। उनके लिए चर्चिल, गांधी जी, विनोबा भावे, ये सब अपनी वृद्धावस्था में भी जवान थे।
क्यों, किस आधार पर?
क्योंकि उनमें उत्साह था, एक लक्ष्य था, हिम्मत थी, वो जीवट था उनमें।
और इसके उलट?
इसके उलट वो कहते हैं कि कोई युवा भी अगर निराश है, हताश है, उसका कोई लक्ष्य नहीं, कोई उमंग नहीं, तो वो बूढ़ा है, वो एक तरह से मरा हुआ है। ऐसे लोगों से समाज को कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उनमें वो चिंगारी ही नहीं है।
तो कुल मिलाकर ये उद्बोधन एक तरह का आवाहन है, एक पुकार है कि भाई जिसके पास भी कोई खास गुण है, कोई प्रतिभा है, जिसे पूज्य गुरुदेव विभूति कह रहे हैं, वो उसे सिर्फ अपने तक ना रखे, उसे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए इस्तेमाल करे। यही आज के समय की मांग है।
बिल्कुल सही कहा आपने, सारा जोर बाहरी संपत्ति पर नहीं बल्कि भीतरी विभूति पर है, उस जीवट पर। सबसे जरूरी है इस जीवट को पहचानना और फिर उसे सही दिशा देना। हमें ऐसे जिंदा दिल लोगों को खोजना है और उन्हें प्रेरित करना है।
ये चर्चा हमें सोचने पे मजबूर करती है। आज के समय में देखें तो कोई व्यक्ति अपने अंदर की इस खास क्षमता, इस विभूति को कैसे पहचाने, और अगर पहचान ले तो उसे समाज के लिए उपयोगी कैसे बनाए। आज के दौर में ये जीवट कैसा दिखता होगा, ये सोचने वाली बात है।
बिल्कुल, ये प्रश्न हर किसी को अपने आप से पूछना चाहिए। ओम शांति।